السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں سعدی اسد، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں سلیمان تاروالی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے ان میں سب سے پہلے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی جانب سے 7 مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں، اور اس پابندیوں کو عدالت نے، اپیلز کورٹ نے متحد عدلیہ کا جو فیصلہ تھا ان پابندیوں کے خلاف، اس کو بحال رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سو ایک طرح سے پھر یہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے لیے یہ ایک بڑا دھچکا ہے، خاص طور پہ اپنے ابتدائی دنوں کے اندر۔ اس پہ ہم بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ دوسرا ہمارا سیگمنٹ ہے، گفتگو ہوگی امریکہ کے کیا دفاعی نوعیت کے مفادات ہیں پاکستان اور بھارت کے ساتھ، اور اس میں کامنلٹیز کیا ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے، کل نئے وزیر دفاع، ان کا ٹیلیفونک رابطہ دونوں ملکوں کے آفیشلز کے ساتھ، وہاں پہ انہوں نے اپنے جو بھارت کے ہم منصب ہیں ان کے ساتھ گفتگو کی، اور پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج کے سربراہ کے ساتھ ان کا طویل ٹیلیفونک رابطہ رہا۔ اس پس منظر میں بات ہوگی۔ تیسرا ہمارا حصہ ہے، بھارت کے اندر منورٹیز یا اقلیتوں کے ساتھ جو تفریق ہے، اس سے متعلق ایک رپورٹ ہے جو ہائی لائٹ کرتی ہے ان ایشوز کو۔ یو ایس سی آئی آر ایف کی، امریکہ کا یہ وفاقی ادارہ ہے، جس کی رپورٹ میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور چوتھا اور آخری سیگمنٹ سپورٹس، کرکٹ پی ایس ایل سیزن 2، اور آج اس کا دوسرا دن باقاعدہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور بڑی تہلکہ خیز خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، ان کا ہم جائزہ لیں گے۔ یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں، تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ سین فرانسسکو میں قائم نویں سرکٹ کورٹ آف اپیلز نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 7 مسلمان اکثریتی ممالک پر جو سفری پابندیاں لگائی گئی تھیں، اس کے خلاف جو ایک متحد عدالت کا فیصلہ تھا، اس کو برقرار رکھنے کا حکم سنایا ہے۔ 3 ارکان پر مشتمل یہ اپیل کورٹ تھی، اور اس ہفتے کے اوائل میں اس معاملے پر زبانی دلائل اس عدالت نے سنے تھے، اور جمعرات کی شام گئے انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ متوقع طور پر اب امریکی عدالت عظمیٰ اس معاملے کا حتمی فیصلہ کرے گی۔ گزشتہ ہفتے امریکی ضلعی عدالت کے جج جیمز روبرٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کے حکم نامے پر عبوری حکم امتناعی جاری کیا تھا۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ جو سپریم کورٹ کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے نامزد جج ہیں، جن کو ابھی توثیق ہونی ہے کانگریس سے، جج گورسچ، انہوں نے بھی ایک تازہ ترین اپنا جو ان کا اسٹیٹمنٹ کوٹ ہوا، اس میں بھی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ٹویٹس کو، ان کے پیغامات کو ڈی مورلائزنگ قرار دیا عدالت کے جج صاحبان کے لیے۔ تو یہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی جو انتظامیہ کے خاص طور پہ ایسے متنازع فیصلے ہیں، کیا حتمی طور پہ عدالتیں اس کا فیصلہ کریں گی، یہ کہ اس بات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور دوسرا اس کا زاویہ یہ ہے کہ جب سے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے قیادت سنبھالی ہے، اس کے بعد امیگرنٹس کمیونٹی کے اندر کس طرح کا رد عمل ہے، اور خاص طور پہ جو امیگریشن میں جو جھکاؤ یا بہاؤ ہے، وہ اب کس جانب ہے؟ کیونکہ ابتدائی اطلاعات جیسے یہ تھیں کہ شاید کینیڈا جو ہے وہ ایک بڑے آئیڈیل ملک کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، جو امیگرنٹس کو اٹریکٹ کر رہا ہے۔ انالیسز ہم لیں گے، ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے موجود ہیں سہیل قاضی، کینیڈا بیس امیگریشن ایکسپرٹ ہیں۔ ہمیں جوائن کرے ہیں ڈاکٹر چودھری نثار صاحب، ممتاز انالسٹ ہیں، واشنگٹن بیسڈ ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ فیصل قاضی بھی ہمارے ساتھ ہوں، واشنگٹن بیسڈ سینئر جرنلسٹ ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، خیر مقدم۔ ڈاکٹر نثار چودھری صاحب، ذرا پہلے اس کے پولیٹیکل اینگل پہ آتے ہیں اور لیگل اینگل پہ، کتنا بڑا یہ دھچکا ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے لیے، کیونکہ عدالتوں میں ان کے بہت سارے احکامات جو ہیں وہ چیلنج ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو امیگرینٹس پر پابندیوں کا معاملہ تھا، اس کو بڑا ٹف ٹائم مل رہا ہے کورٹس کی جانب سے۔
جی شکریہ جی۔ ایک تو بات میں یہ کہوں گا کہ سب دنیا کا خیال تھا اور امریکنز کا بھی خیال تھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ اوتھ لے لیں گے ایز اے پریزیڈنٹ، دین ہی ول اسٹارٹ بہیونگ لائک اے پریزیڈنٹ، لیکن ہی کنٹینیو ٹو ریمین ڈونلڈ ٹرمپ۔ یہ جو انہوں نے اپنا ڈیسیژن کیا ہے، یہ ایگزیکٹو آرڈر ہے امیگریشن کے متعلق، ہی ہیز نو کمپریہینشن کہ اٹ از ہرٹنگ امریکہ، واٹ ٹو ٹاک آف امیگرنٹ فرام دی مسلم میجورٹی کنٹریز، اور ہی از گیونگ اے میسج ٹو دی ریسٹ آف دی مسلم نیشن اسٹیٹس، جن کی پاپولیشن 1.5 ملین ہے، کہ دس از ہاؤ وی ول ٹریٹ مسلمز، سو یو بیٹر لک ٹوورڈز ایشیا، سو دے ول اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ ادر آپشنز۔ جہاں تک ان کے ایگزیکٹو آرڈر کا تعلق ہے، اور جس میں جوڈیشری نے جو سسپینشن تھی اس کو روکا ہے، اس کو اپ ہولڈ کیا ہے، وہ اس میں دیٹ از ویری کلیئر کہ ان کا جو ایگزیکٹو آرڈر تھا، وہی نہ صرف کہ اسپرٹ اینڈ فنڈامینٹلس वैल्यूज ऑफ दिस कंट्री के, बल्कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था. दिस इज व्हाट द कोर्ट्स हैव सेड. और इसके लिए आपको, चूंकि ही डज नॉट हैव एनी क्लू अबाउट फॉरेन पॉलिसी, और अभी तक ग्राउंड रियलिटीज को, हार्श रियलिटीज को दुनिया को ये कंप्रीहेंड नहीं कर सके, इनकी टीम जो है वो भी अभी तक नहीं बनी और उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है. रिलेटिवली इनके डिसीजन जो हैं रिलेटिवली ऑटोक्रेटिक डिसीजन हैं, और इनकी अपनी बहुत लिमिटेशंस हैं. मेकिंग सच ए बिग डिसीजन, बीइंग द वर्ल्ड लीडर एंड बीइंग द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, बीइंग द चीफ ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, उनके जो ये डिसीजन हैं इस तरह के इम्पल्सिव knee-jerk reaction without processing it, without even trying to understand कि इसके fallout क्या हैं. जब उसके,
लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल मैं इसमें ज़िम्नन करना चाहूँगा. डोनाल्ड ट्रंप भले सीजनल पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिक्स उनका शोभा नहीं था, लेकिन उनके साथ जो टीम है और फिर खासतौर पे जो कांग्रेस के अंदर लोग बैठे हैं वो तो सीजन पॉलिटिशियन हैं. वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझते हैं, उसके साथ क्या कहना चाहिए कि काम भी करते रहे उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो क्या ये तजावीज़ उनकी जानिब से नहीं जा रही कि ऐसे जो कंट्राडिक्टिंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हो सकते हैं वो बाद में मुश्किल का सबब बन सकते हैं इंतजामिया के लिए भी, और फिर अगर अदालतें उनको नॉकआउट करती हैं तो इससे एक पोलिटिकल प्रेशर जो है वो ज़्यादा डिवेलप होगा.
ये वेले बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ा अच्छा सवाल है. लेकिन अभी इनकी कंप्लीट अलाइनमेंट नहीं हो सकी रिपब्लिकन पार्टी के साथ, कंप्लीट अलाइनमेंट नहीं हो सकी. देर आर मेनी ऑफ देम हु डिफर विद हिम एंड दे आर नॉट डिफरिंग पब्लिकली, बट दे आर कंसर्न्ड कि जो ये डिसीजन ले रहे हैं ये मिड टर्म इलेक्शन में भी कैन हर्ट द रिपब्लिकन पार्टी and they might lose Senate in the majority and the Senate. At the same time, मैंने आपसे जिक्र करना था कि ये जो national security है, it is but the translation of your economic strength. और अगर आप इतने countries को offend कर लेंगे तो आपकी markets क्या होंगी फिर? और जो मुसलमान कंट्रीज की मार्केट्स हैं यहाँ से ये इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं विच हेल्प्स यूएसए. सो एक्चुअली इनकी पॉलिसी जो है इससे ना सिर्फ डिस्क्रिमिनेटरी है अगेंस्ट मुस्लिम, बट एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू हर्ट नॉट ओनली इन द शॉर्ट रन, इवन इन द लॉन्ग रन द इंटरेस्ट ऑफ यूएसए.
सही. अच्छा मैं आता हूँ आपकी जाने वापस भी. फैसल काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर साफ़ी हैं और इन इश्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं. सुहेल काजी साहब हमारे साथ कनाडा से मौजूद हैं. फैसल आप हमें ये बताइएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप उनके अहकाम, खासतौर पर जो इमिग्रेंट कम्यूनिटी है जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, किस नौीयत की कहना चाहिए कि अनकम्फर्ट अदम इत्मीनान का सबब बने हैं, और अब अदालतों से जो फैसले आ रही हैं वो किस हद तक तशफ़ी का सबब बन रहे हैं?
जहाँ तक आदम इत्मीनान की बात है, तो जिस रात प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे ट्रंप, उस दिन से ही आदम इत्मीनान था, परेशानी थी, कंसर्न थे. और जो ये ऑर्डर्स आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इमिग्रेंट कम्युनिटीज के लिए प्रिपेयर्ड भी थी, क्योंकि ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं. ये ऑर्डर्स इस किस्म के, पेट्रियट एक्ट, टेलीफोन को सुनना, रिपोर्ट करना, ये 9/11 के हादसे के पास से ही शुरू है, और तकरीबन ये इसको 15-16 साल हो चुके हैं इन बातों को. लेकिन ये कि इसमें तेज़ी ये देखने में आई है कि मीडिया में इनको हर रोज़ हर रात उछाला जाता है, बताया जाता है, और अदालतों में तो इमिग्रेंट कम्युनिटी यहाँ पर अपना केस नहीं लड़ रही, वो तो चुप करके अपने घर बैठे हुए. ये तो अमरीकी हैं, डेमोक्रेट्स हैं या सिविल लिबर्टी यूनियन है जो कि उनका केस लड़ रही है. और इससे मैं बताता चलूँ कि ये उन शहरों, उन स्टेट्स की कहानी है जहाँ पे इमिग्रेंट्स ज़्यादा हैं और जहाँ पर ट्रंप इलेक्शन हारे थे, जहाँ से ट्रंप को वोट नहीं मिले. तो मेरा नहीं ख्याल कि इमिग्रेंट कम्युनिटी जो है वो तैयार नहीं है.
अच्छा फैसल ये बताएं कि अब ये मामला नेचुरली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा,
केसेस को लड़ेंगे.
अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे जो नई इंडक्शंस या नई नॉमिनेशंस भी हो चुकी हैं, और कहा यह जाता है कि वहाँ पे जो कंजर्वेटिव जजेस हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो सकती है. सो क्या ख्याल किया जाए कि वो अपनी जो भी कहना चाहिए कि नज़रियाती या पॉलिटिकल एफिलिएशन तो नहीं होगी, लेकिन जो नज़रियाती झुकाव होता है उसके बरक्स भी क्या ट्रंप इंतज़ामिया का जो ये हुक्म है या प्रेसिडेंट ट्रंप का, इसके खिलाफ फैसला आ सकता है? जैसे अभी बाकी दो अदालतों ने फैसला दिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट भी उसको मेंटेन रख सकती है?
मेरा नहीं ख्याल, हमें यहाँ समझना पड़ेगा, अगर हम लोगों ने केस फॉलो किया आपके सामईन के लिए जो कि पूरी दुनिया में है, उनको बताता चलूँ कि ये एक इफेक्टिव ऑर्डर है, जस्ट लाइक जैसे हमारे मुल्क में सदारती ऑर्डिनेंस होता है, ठीक है जी। और ये अदालतों ने टेम्परेरी हॉल्ट किया है दोनों अपीलों में, उन्होंने उन लोगों को जो कि कॉट इन बिटवीन हुए थे, जो एयरपोर्ट्स पे थे, जो रास्ते में रवाना हो चुके थे, उनको रिलीफ दिया है, ठीक है जी।
सही जी। सुहेल काजी साहब, आप हमें ये बताइएगा कि ज़रा इसका दूसरा एंगल जो है, जो इमिग्रेंट्स का बहाव है या फ्लो है, उसमें क्या फ़र्क पड़ा है ख़ासतौर पे कनाडा के लिए? और बहुत सारे लोग थे जो इलेक्शन से पहले ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी की सूरत में वो भी कनाडा जा सकते हैं। सो क्या तब्दीलियाँ या फ़र्क आपने देखा है पिछले 2 महीने के दौरान?
थैंक यू असद। ये जो पहले नया प्री इलेक्शन क्रिएट हुआ था जब अमेरिका में इलेक्शन होने वाले थे, तो ये जो अनरेस्ट था उस वक्त से था, लेकिन वो फिर मोर ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए और उन्होंने फैसले करने शुरू कर दिए, तो उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स हो गया। हमें यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब इन्होंने रिफ्यूज किया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं 7 मुल्क के लोगों को नहीं आने दूंगा, तो इन्होंने वेलकम किया, तो ये एक डिफरेंस था। और एवरी डे जो हमारे तरफ रुझान है फ्रॉम यूएस, वो न कि सिर्फ मुसलमानों की तरफ से है, बल्कि और दूसरी कम्युनिटीज भी जो हैं, इवन ब्लैक कम्युनिटीज हैं, मैक्सिकन हैं, और जो भी लोग हैं वो भी कनाडा माइग्रेट करना चाहते हैं।
सही। डॉक्टर निसार चौधरी साहब, आप हमें बताइएगा कि आपकी कैलकुलेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट से किस नौीयत का फैसला आ सकता है, एक बात। और फिर ये कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्केप्टिसिज्म है और तनकीद भी है कि अदालतों में जाके ये फैसले होंगे डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के। सो इट सेल्फ जो है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनके लिए कितना सेटबैक है? जी डॉक्टर निसार चौधरी साहब, जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
मैं
मैं
आपको
जी,
ही शुड बिकम प्रेसिडेंशियल नाउ, ही शुड नो दैट ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन, सो द मोस्ट पावरफुल मैन शुड आल्सो बी मोस्ट रिस्पांसिबल मैन, एंड दैट इज अ गैप बिटवीन दीज टू।
सो क्या अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आएंगे जब उनको ये एहसास होगा कि चीज़ें बाउंस बैक कर सकती हैं? सो क्या तवक्को रखी जाए उनकी जो एग्जीक्यूशन का स्टाइल है चीज़ों में, उसमें
जो सुप्रीम कोर्ट के आपने मेंशन किया है, व्हेन दे गो टू सुप्रीम कोर्ट, मैं अपनी जगह कन्विंस्ड हूँ कि सुप्रीम कोर्ट विल अपहोल्ड दिस डिसीजन दैट हैज बीन टेकन बाय थ्री जजेस, क्योंकि एनीथिंग सुप्रीम कोर्ट हैज द रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट्स ऑफ पीपल। और दूसरी बात यह है कि अगर इन्होंने टेररिज्म इज द मेन इशू and he wants to keep people safe here, तो उसके लिए एक generalized, better articulated across the globe order होना चाहिए था कि जो लोग इधर आते हैं उनकी vetting review की जाए and make it sure कि ये general order होना चाहिए था for everybody, for every country in the world, के to make America safer. इन्होंने जो single out किया है, this also tells you कि वो इसमें sophistication नहीं है और इन्होंने इसमें discrimination जो थिंकिंग है वो इसमें इंपार्ट कर दिया।
जो प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे तो अहकामात
इनकी टीम है, कि टीम को अभी नहीं सुन रहे, ही इज नॉट लिसनिंग टू द टीम, ही इज मेकिंग हिज ओन डिसीजन जो प्री कंसीव्ड हैं ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन जो उन्होंने कंसीव किए हुए थे, उनसे बाहर नहीं आ रहे।
सही। लेकिन एक तो बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है जो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम जो जिसको हाईलाइट कर रही है, जेफ सेशंस नए अटॉर्नी जनरल हैं, उनकी तौसीक हो चुकी, वो अपने अहदे का हलफ भी उठा चुके हैं, वो ये कहते हैं कि हम दर हकीकत जो इमिग्रेशन का निज़ाम है, जो कानूनी निज़ाम है, उसको बेहतर कर रहे हैं, उसको तब्दील कर रहे हैं, और जब तक हम इसको नहीं कर पाते तब तक हम इमिग्रेशन पर थोड़ा बैन रखना चाहते हैं या उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। ये मैंने दूसरी तरफ का वर्जन भी दिया है। जी
जी, उन्होंने जेफ सेशन ने ये बात की है, लेकिन जेफ सेशन इज फॉरगेटिंग कि ऑलरेडी द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इज बीइंग डिबेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट हैज मेड मुस्लिम्स अक्रॉस द ग्लोब लिटिल नर्वस, और फिर अगर बाहर के लोग नहीं आएंगे टू दिस कंट्री, तो इनकी अपनी होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, ये जो इनके ट्रैवल एजेंसीज हैं या इनके जो कंपनीज हैं एयरलाइन कंपनीज, इन सबको, रेस्टोरेंट्स को, सबको, टूरिस्ट का एरिया जो है, दिस विल बी ए ग्रेट इकोनॉमिक लॉस. बिकॉज इस तरह का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है, इट विल टर्न ऑफ मेनी दोज पीपल हु आर ओरिजिनली प्लानिंग टू ट्रैवल बट दे आर रिलक्टेंट और दे डोंट वांट टू ट्रैवल टू दिस कंट्री.
जी फैसल कैसे साहब, हवाई अड्डों पर ख़ास तौर पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, इसके बावजूद कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे उनको अदालतों ने एक तरह से नॉकडाउन किया है, लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं कि जो ट्रैवलर्स हैं जिनके प्लान्स हैं सफ़र करने के, उनके अंदर किसी तरह का कोई तशवीश या तजब्जब हो सफ़र करने से पहले? जी फैसल.
जी जी आवाज़ आ रही है?
जी जी आ रही है.
पहले तो 24 घंटे जो पहले 24 घंटे से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के, उसमें यकीनन कंफ्यूजन था दोनों तरफ, होमलैंड सिक्योरिटी के स्टाफ में भी और जो मुसाफिर ट्रैवल कर रहे थे उनमें भी. लेकिन अब काफ़ी हद तक ये सिचुएशन जो है रिलैक्स हो चुकी है. एयरपोर्ट से लोग बाकायदा आराम से आ रहे हैं, खासकर मुसलमानों की तो रोज़ाना सोशल मीडिया पर भी और प्रेस में उनकी तस्वीरें आ रही हैं, उनको उनकी सिटी के लोग लेने भी आते हैं, उनके रिश्तेदार भी लेने आते हैं. तो फिलहाल तो ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन ये कंसर्न ज़रूर है, एक खदशा ज़रूर है कि जो ही ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अपनी असली सूरत में अगर नाफिज हो गया तो यकीनन लोगों को परेशानी होगी. लेकिन उस वक्त तक लोग ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके होंगे और जो भी ट्रैवल कर रहे होंगे वो अपने मुल्कों में होमलैंड सिक्योरिटी या उनके जो स्टाफ हैं और उनकी इमिग्रेशन भी बाहर की जब रवानगी की एयरपोर्ट है वहाँ से हो जाया करेगी. तो मेरे ख्याल में ये गुम की सिचुएशन अब काफ़ी हद तक क्लियर होती जा रही है जहाँ तक मुसाफरों का और तारकिन वतन का अमरीका आने की क्या वो है.
सुहेल भाई साहब, हम कैनेडा में, हमें ये बताइएगा जो पोलिटिकल रिस्पॉन्स है वहाँ पर पोलिटिकल लीडरशिप का, ख़ासतौर पे इन पाबंदियों के ऊपर, वो भी बहुत हाईलाइट हो रहा है मीडिया के अंदर भी, सोशल मीडिया के अंदर भी. सो जो कैनेडा के अंदर इमिग्रेंट कम्युनिटी है ख़ासतौर पे, वो अगर कंपैरिजन करती है ख़ासतौर पे आजकल के हालात का दोनों मुल्कों के अंदर, तो वो अपने आप को कहाँ ज़्यादा मुतमिन पाती है, और ख़ासतौर पर उसकी अपनी जो लीडरशिप के बयान आ रहे हैं उस पर उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है?
असल साहब, यहाँ पे एक्चुअली इमिग्रेशन बेस्ड कंट्री है तो यहाँ बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है एज कम्पेयर टू यूएस. और इवन आप अगर देखें पिछले वीक में हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं एनडीपी के, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि बिल्कुल एक बहुत एस्टोनिशिंग था सबके लिए. अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों एक पेज पे हैं और दोनों ही वेलकम कर रहे हैं, जैसे कि अभी सीरिया के रेफ्यूजीज को वेलकम किया गया है और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एवरी डे उनके कोई ना कोई स्टेटमेंट्स होती हैं. तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा माहौल है, इमिग्रेशन फ्रेंडली है. और आफ्टर ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं और उनपे इम्प्लीमेंटेशन हुई 2 हफ्ते पहले और उसके बाद के जो हालात हैं, तो इसमें बहुत बहुत बेहतर हालात हैं यहाँ पे, बहुत कंफर्टेबल लोग फील करते हैं.
जी बहुत शुक्रिया सुहेल काजी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया. फैसल काजी, आपके भी हम मशहूर हैं. डॉक्टर साहब, आपसे हम दरख्वास्त करेंगे कि 2 मिनट हमें मजीद दीजिए, अगले सेगमेंट पे मैं आपके एनालिसिस लेना चाहूँगा. एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करते हैं.
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu.
वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम जहारंग में आपका खैर मकदम. मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर हैं सादिया असद. और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे अमेरिका के भारत और पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटजिक मफादात के ऊपर. नई इंतज़ामिया है यहां पे और वो किस तरह से रीअसेस कर रही है अपने गोल्स को, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को, भारत के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, और दोनों मुल्कों की क्या अहमियत रहेगी यहाँ पर. गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि जो नए वज़ीर दिफा हैं जिम मैटिस, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ टेलीफोन किया भारत में अपने जो हम मनसब हैं मनोहर पारेकर, उनके साथ उनकी बड़ी तफसीली गुफ्तगू रही जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात पे बात हुई और बाकी भी कुछ ऐसे इश्यूज़ जिसमें भारत के कुछ शहरियों को वीज़ा में जो मुश्किलात आ रही थी या बिजनेसमैन को, वो मामलात भी सामने रखे गए या ख़ासतौर पे अब वो भारत के जो एनालिस्ट हैं उनके सामने आ रही हैं. दूसरी जानब पाकिस्तान के फ़ौज के सरबराह जनरल कमर बाजवा के साथ भी तकरीबन 25 मिनट पर मुहित तफसीली बातचीत हुई. आईएसपीआर ने जो स्टेटमेंट जारी किया था اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ دونوں رہنماؤں نے بڑے اچھے ماحول میں ایک دوسرے سے بات کی. جنرل باجوہ نے مبارکباد پیش کی ان کو نئی ذمہ داریوں پہ, اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ بھی اس امید کا بھی اظہار کیا کہ جم میٹس کو جو عملی تجربہ ہے اس ریجن کے معاملات حل کرنے میں وہ مددگار رہے گا. جم میٹس افغانستان اور عراق کی جنگوں کے دوران امریکی فورسز کے کمانڈر کے طور پہ کام کر چکے ہیں. یہ وہ پس منظر تھا جس کے بھی آپ پہ یہ توقعات کا اظہار کیا جا رہا تھا. جنرل جم میٹس, ان کی ان رابطوں کے پس منظر میں ہم جائزہ لیں گے کہ واشنگٹن کس طرح کے تعلقات چاہے گا, کس طرح کے دفاعی اس کے مفادات ہیں پاکستان اور بھارت کے ساتھ, اور اس میں بیلنس جس کا تقاضا عموماً پاکستان سے ہوتا ہے وہ رکھنا ضروری بھی ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر نثار چودھری صاحب, آپ کا انالیسس دونوں
جی ہاں, آپ نے بہت ہی بڑی اچھی پکچر ایکسپینڈ کی ہے. آئی اپریشیٹ دی ویو ایکسپینڈڈ اٹ. آئی ہیڈ دی پرولیج ٹو میٹ جنرل میٹس بیفور ہی بیکیم سیکرٹری آف ڈیفینس, اینڈ ہی از اے ویری ٹال مین مینٹلی. ہی ہیز اے ویری گڈ کمپریہینشن اباؤٹ آور ریجن, اینڈ ہی ہیز مینی فرینڈز ان پاکستان آرمی, اینڈ he looks at a bigger picture. Unki capacity to look at the bigger picture is tremendous. Lekin usme ye cheez hame nahi bolni chahiye ki President Clinton ne initiative liya tha to upgrade their relations with India to manage the rise of China. This was the only country they could find in this case. To lekin unki jo Clinton ki policy thi, it was transformed into strategic relations with India.
Same.
And that continued, the push continued the same policy and expanded it further. And even Obama continued the same policy and it even made it broadly based. Lekin Pakistan ke mamle mein hamare sath jo inki relation hai US ki wo relatively narrow band mein hai, wo broadly based strategic relation nahi hai. Aur Pakistan ki importance mein not only war against terrorism, yeah, it's a nuclear country, جن کے لیے ضروری ہے, یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ذہن میں رکھتے ہیں کہ اسٹیبلٹی ان افغانستان جہاں پہ انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, فائنینشیل انویسٹمنٹ اینڈ ہیومن ٹول, ان کی اسٹیبلٹی جو ہے دیٹ از انٹر ڈیپینڈنٹ آن پاکستان. دونوں کنٹریز کی جب اسٹیبلٹی انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, اینڈ دے نو افغانستان کینٹ بی اسٹیبل if Pakistan is not stable. So they will continue to have interest. They will continue to support Pakistan, but in a narrow band. Lekin unki strategic relation jo hain, wo India ke saath continue karenge. Even, they will expand it.
Same.
Lekin Pakistan ke saath, jo common threads hain, jis se pehle kaam ho raha hai, they will continue to work on those.
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک اور آپ کو تھوڑا ایک خبر بھی دیتا چلوں. کل یہاں پہ جنرل جان نکلسن تھے جو افغانستان کے اندر امریکہ کے ایک چوٹی کے موجودہ کمانڈر ہیں. وائس یہاں پہ ان کی وائس آف امریکہ میں بھی وہ آئے, افغان سروس کے ساتھ ان کی بات ہوئی, وائس آف امریکہ سے ان کی بات ہوئی. سو ان کا ایک جو بیان ہے, اسٹیٹمنٹ ہے, میں صرف وہ کوٹ کروں, صورتحال واضح ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ جو افغان جنگ ہے وہ تعطل کا شکار ہے, اسٹیلمنٹ میں ہے. سو اب یہ انتظامیہ یہاں پہ تبدیل ہو چکی ہے, یہ اس افغان وار کا کیا کنکلوژن چاہے گی, اور اس کے لیے پاکستان اور بھارت دونوں سے وہ کیا توقع رکھے گی؟ کیونکہ اگر اسٹریٹجک اور ڈیفنس ریلیٹڈ اس کے انٹرسٹ کو دیکھا جائے تو افغان وار سب سے بڑا چیپٹر کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے.
بالکل صحیح بات ہے. افغان وار کے معاملے میں یہ خود امریکن ایڈمنسٹریشن مانتی ہے کہ when we went to Afghanistan, we did not know Afghanistan. When we left Afghanistan, still we did not know Afghanistan. So they will be reviewing their strategy. لیکن ان کی جو ٹروپس کی پریزنس ہے, پھر جو پیپل ہو آر نون ایز کنٹریکٹرز اور جنرل کنٹریکٹرز, ان کا نمبر جو ان کے ٹروپس کا نمبر ہے اس سے بھی ڈبل ہوگا وہاں پہ. لیکن دس از سم تھنگ دے فلی انڈرسٹینڈ, جو انہوں نے بات کی ہے افغانستان کی, دیٹ از ٹرو. اس میں انویسٹمنٹ اتنی ہے جو ایکسس دیتا ہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو, وہ ان کے جیو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک اور اکنامک انٹرسٹ میں ہے. اس کے لیے پاکستان کے ساتھ ان کی ریلیشن جو ہیں اس کی ٹریجیکٹری بہتر ہوئی ہے پہلے. یہ نئی ایڈمنسٹریشن کیا کرتی ہے, آئی پرسنلی تھنک اٹس جسٹ این اوپینین کہ دے وڈ لائک ٹو کنٹینیو دی سیم پالیسی. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو برنگ اینی میجر سگنیفیکنٹ شفٹ آر اے چینج.
when
it comes to U.S.-Pakistan relations, there won't be anything sensational or anything in a big way where Pakistan would be also started getting the preferred treatment in the region.
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم عموماً یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہاں پہ انتظامیہ تبدیل ہوئی ہے، ایک بڑا متواتر سوال اٹھایا گیا ہے یہاں پہ بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی، وائٹ ہاؤس کے اندر بھی، کہ کیا پاکستان تک دائرہ وسیع ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو ٹیرر تھریٹس ہیں یہاں امریکہ کے اندر جتنی کوششیں ہوئی ہیں دہشت گردی کی، اس میں سے جو کرٹکس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر کا تعلق تو سعودی عرب یا پاکستان سے ہے، اور وہ پاکستان اس لسٹ میں کیوں نہیں ہے؟ اگرچہ یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ پاکستان اس فہرست کا حصہ نہیں ہوگا، لیکن اس پس منظر میں پاکستان کے اوپر کیا دباؤ ہو سکتے ہیں، یا جو ایک مطالبہ ڈو مور کا کیا جاتا ہے وہ دوبارہ پاکستان کے اوپر وہ پریشر آ سکتا ہے؟
نہیں، بالکل آ سکتا ہے اور آ رہا ہے، بلکہ پتا ہے آپ کو، حافظ سعید کو فرسٹ ٹائم آفٹر سو مینی ایئرز انہوں نے انڈر ہاؤس ریسٹ کیا ہے، پھر حقانی گروپ کے ساتھ بھی دے آر ٹرائنگ ٹو مینیمائز دیئر کانٹیکٹ، اف ناٹ کمپلیٹلی ٹرمینیٹنگ اٹ، اینڈ دے وڈ لائک ٹو ٹریٹ دیم انڈسکریمنیٹلی لائک ادر طالبان آر ٹریٹڈ بائی پاکستان. اور پھر یو ایس اے پاکستان جو ہیں، as I mentioned before, Pakistan is needed. They are fully convinced کہ افغانستان کی اسٹیبلٹی جو ہے اٹ از ڈپینڈنٹ آن دی اسٹیبلٹی آف پاکستان. ویدر ادر اسٹیک ہولڈرز وانٹ ٹو سی پاکستان اسٹرانگر آر ناٹ ادر دین چائنا، بٹ دے سرٹنلی وانٹ اسٹیبلٹی ان پاکستان، سو دیٹ اینڈ دین ایٹ دی سیم ٹائم انڈیا اور یو ایس اے کے بھی ڈیفائنڈ جو کامن آبجیکٹیوز ہیں افغانستان کے اندر، امریکہ وڈ لائک ٹو اف انڈیا اگریز رادر ٹو ریپلیس یو ایس اے ان افغانستان اینڈ دین شیئر دیئر اسٹریٹجک گولز ٹو اچیو دیئر کامن ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز. یہ افغانستان کی جو ریلیشن ہے ان کی، اس میں انویسٹمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ دے کانٹ جسٹ واک اوے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی جو اسٹیبلٹی ہے کین اونلی بی اسٹیبل اف پاکستان از اسٹیبل. سو ہماری ریلیشن ان کے ساتھ جو چل رہی ہیں دے ول کنٹینیو. اس میں پرسنلی جسٹ ان مائی اوپینین دیر از نو نروسنیس. سرٹنلی وہ لوگ جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں، جو آنا چاہتے ہیں، جو یہاں جاب کرتے ہیں، جو میڈیکل کے لوگ ہیں، جو ریزیڈنسیز کر رہے ہیں، ان کے تو کئی ہاسپٹل نے ان کو لکھا ہے کہ ابھی ٹریول نہ کرے اپنے ریزیڈنس کو. تو اس لیے ہمیں کنسرن ضرور ہے، لیکن یو نو پاکستان از اے ویری ہیز اے ویری آرگنائزڈ ویل موٹیویٹڈ اینڈ ویل اکوپڈ اینڈ ویل ٹرینڈ ملٹری، اینڈ پاکستان از آلسو نیوکلیئر. دس از ون آف دیئر کنسرن دیٹ دے وانٹ ٹو ریمین انگیج. لیوریج ان پاکستان اینڈ دے شوڈ انڈرسٹینڈ واٹ پاکستان از ڈوئنگ، کیونکہ دے کین ناٹ افورڈ سے دی کانفلکٹ ایسکیلیٹنگ بٹوین دیز ٹو نیوکلیئر.
ڈاکٹر نثار چودھری صاحب ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل جمشید ایاز صاحب نے، ایک ممتاز اسٹریٹجسٹ ہیں، فارمر ہیڈ انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے. ان سے ذرا ہم کوئک انالیسز لیتے ہیں. جنرل صاحب آپ یہ فرمائیے گا، ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر نئی انتظامیہ بھارت اور پاکستان دونوں کے ساتھ کس طرح کے اپنے دفاعی مفادات وابستہ رکھتی ہے، ان میں کیسے وہ بیلنس رکھے گی، اور اس ریجن کے اندر اپنے ان انٹرسٹ کو پرسو کرنے کے لیے کیا راستہ، کیا طریقہ اختیار کرے گی، اس میں مین پلیئرز کون سے ہو سکتے ہیں؟ بڑا وائڈ رینج کوسچن ہے، آپ اس کو رسپونڈ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ افغان جنگ جس کے بارے میں جنرل نکولس یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی تک تعطل کا شکار ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے گا کہ کیا انٹرسٹ ہیں، اور پھر پاکستان اور بھارت دونوں سے توقعات کیا ہیں امریکہ کی، یا ہو سکتی ہیں نئی انتظامیہ کی. جی جی جنرل صاحب.
ہاں جی، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان دونوں کے ساتھ آپ نے رکھا ہے اپنے تعلقات، تو آپ نے دونوں کے ساتھ فیل ہونا پڑے گا. اف یو ناٹ فیل ود دیم دین نتھنگ ول ہیپن. سو اٹس امپورٹنٹ دیٹ یو فیل ود دیم انڈیا ایز ویل ایز پاکستان، بیکاز یو نو اف دے آر ناٹ فیل دین تھنگز گو ہیئر وائر. سو آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ. That is the first point. The second point is, Pakistan is a smaller country compared to India. So if a smaller country has to be in the bargain, so you have to look after them very well. Same. And you have to ensure that you give them a due share of whatever they need. So I think that is important. So I think America has to really do its homework very well. America at the moment has not done its homework, and they just want to react without any knowledge or anything else. So I think that is very important.
Yeah. بہت شکریہ آپ کا جنرل جمشید ایاز صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر نثار چودھری صاحب, ان کے بھی ہم بےحد مشکور ہیں. سامعین ایک بریک ہم لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ سے یہ پروگرام آپ براہ راست سن رہے ہیں جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد. میڈیم ویو 972 کلو آرٹس پہ یہ ہمارا پروگرام براہ راست نشر ہو رہا ہے, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے امریکہ کے ایک وفاقی ادارے کی رپورٹ. وفاقی ادارہ ہے یو ایس سی آئی آر ایف, یعنی دا یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم, اور اس کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ بھارت کے اندر جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے خلاف جو امتیاز ہیں یا امتیازی واقعات ہیں اس میں بڑی تیزی آئی ہے. اور اس رپورٹ کے مطابق سال 2014 کے بعد خاص طور پہ جو ریلیجیس منورٹیز ہیں ان کا جو سوشل بائیکاٹ ہو یا ان کے خلاف زبردستی ان کے مذہب کی تبدیلی کے معاملات ہوں, اس میں بہت ڈرامائی اضافہ ہوا ہے. یہ یو ایس فیڈرل ادارے کی رپورٹ ہے, اس نے اس کو سپانسر کیا ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو یو ایس سی آئی آر ایف ہے یہ امریکی حکومت پہ عموماً جو ہے وہ زور دیا کرتا ہے کہ وہ جو انسانی حقوق کا یا مذہبی آزادیوں کا معاملہ ہے اس کو وہ خاص طور پہ اس وقت اپنے سامنے رکھے جب وہ بھارت کے ساتھ اپنے سفارتی یا تجارتی تعلقات کو پرسو کر رہا ہوتا ہے. ہم نے پہلے جب اس سے پہلے بات کی ہے سو اس میں بھارت کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور بھارت کی یہ بڑی ایک امپورٹنٹ جگہ ہے واشنگٹن کے نزدیک. اس کے کئی خواب و ٹریڈ کے معاملات ہوں, وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی نوعیت کے تعاون کے معاملات ہوں, لیکن کیا یہ مذہبی آزادیوں کا معاملہ بھی امریکہ کے لیے اہم ہو سکتا ہے؟ اور جس طرح سے یہ ہائی لائٹ ہوا ہے واشنگٹن کیا اس کو پرسو کرے گا, ایک بات. اور دوسرا یہ کہ کیا بھارت کے اندر بھی, چونکہ یہ 2014 کی جس کی بات کریں غالباً یہ وہ ایرا ہے یا وہ وقت ہے جس میں وہاں پہ ہم بھارت کے اندر نریندر مودی اور ان کی جو کابینہ ہے یا ان کی جو حکومت ہے اس کو ایکشن میں دیکھتے ہیں. سو کیا اس کا اشارہ اسی جانب ہے؟ انالیسس ہم لیں گے. پروفیسر کمل مترا چنائے ہمارے ساتھ موجود ہیں, جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ان کی وابستگی, انسانی حقوق کے بھی علمبردار ہیں. پروفیسر کمل صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے ایک وفاقی محکمے کی رپورٹ پہ جس میں کہا یہ گیا ہے کہ وہاں پہ جو مذہبی آزادیاں ہیں ان کا سکوپ کم ہو رہا ہے, اور اس میں بڑا ڈرامائی اضافہ ہوا ہے 2014 کے بعد. لوگوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے, یا پھر ساتھ ساتھ ان کا جو سوشل بائیکاٹ ہے ایسے ایشوز پہ. کیا یہ احساس پاکستان بھارت کے اندر بھی موجود ہے ریلیجیس فریڈمز کے ریفرنس میں؟
پوری بھارت میں نہیں, کچھ راجیوں میں خاص طور پہ جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی جس کا نیتا نریندر مودی مکھیہ منتری ہے ان کا کچھ کوشش ہے, مگر جو سیکولر فورسز ہیں وہ بھی ابھی بھی کافی مضبوط ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک طرف ہو جائے, مگر دقت یہ ہے اس سمے چناؤ ایس ایل پی ضلع سے گورنمنٹ ضلع, اور اس
प्रोफेसर साहब, हम आपको कथा कलामी की माफ़ी, हम आपको दोबारा टेलीफोन मिलाने की कोशिश करते हैं, शायद बेहतर हमें। जी कनेक्शन शायद, लेकिन हम दोबारा ट्राई करते हैं सम टाइम, इसी कनेक्शन लेवल के बावजूद शायद हम आपको बेहतर रिसीव कर सकें। जी सविन, एक ब्रेक लेते हैं। मीनवाइल ब्रेक लेने के बाद जब वापस आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि प्रोफेसर कमल मित्रा चनाए और अनवर इकबाल सीनियर साफ़ी हैं वाशिंगटन बेस्ड, वो हमारे साथ मौजूद हूँ, जिनकी ये ख़ास तौर पर जिन्होंने ये रिपोर्ट फाइल भी की है और इसको वो फॉलो कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
प्रोग्राम जहांरंग में आपका खैर मकदम। बात हम कर रहे हैं भारत के अंदर मजहबी आज़ादियों की, और अमेरिका के US कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के यानी मजहबी आज़ादियों से मुतालिक अमेरिका का जो बैन अल-अक़वामी इदारा है, बैन अल-अक़वामी कमीशन है, उसकी रिपोर्ट जो ताज़ा तरीन है, उसके कुछ कंटेंट पे हम बातचीत कर रहे थे, जिसमें कहा यह गया है कि साल 2014 के बाद भारत के अंदर ऐसे वाक़यात में ख़ास तौर पे बहुत ड्रामाई तौर पे तेज़ी आई है, जिसमें लोगों को ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करने पे मजबूर किया जाता है, या फिर ये कि उनका जो समाजी बाइकाट है उनके ख़िलाफ़ उसके वाक़यात ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। इसके बावजूद कि भारत जो है वो एक बड़ी जमहूरियत भी है, सेकुलर मुल्क है, मजहबी तौर पे रियासत का कोई वहाँ पे मजहब नहीं है, लेकिन इस तरह के वाक़यात भारत के साथ अगर जुड़ते हैं तो उस पर किस तरह का दबाव हो सकता है या कैसे उसको इम्पेक्ट कर सकते हैं। प्रोफेसर कमल मित्रा चनाए साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शायद हम इस बार उनको बेहतर सुन सकें। जी प्रोफेसर साहब, आप अपनी गुफ्तगू, अपना जवाब जो है वो शुरू से आप उसको दोबारा दे सकते हैं, क्योंकि पहले हमें सुनने में दिक्कत थी।
देखिए साहब, हमारे यहाँ एक लहर है जो मज़हब के मामले उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि सब जो हिंदू, जिसको हिंदुत्व कहते हैं, ये कट्टर हिंदू, वो चाहते हैं कि दूसरे मज़हब को दबाया जाए, मगर ये अक्सर हुआ नहीं है। मगर क्या हुआ है कि जब चुनाव होते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं, तो वो छोटे मजहब पे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने हिंदुओं को भगा दिया अपने घरों से। कभी कभी छोटे मोटे दंगे भी होते हैं। कुछ साल पहले काफी बड़ा दंगा हुआ उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में। तो स्थिति बहुत खराब नहीं है, मगर जो 2014 में और उससे पहले जो सेकुलर सरकार थी कांग्रेस की, उससे ये लोग काफी राइट विंग है, और इस पे सेकुलर फोर्सेस और राइट विंग फोर्सेस के बीच में तगड़ा मुकाबला है। और जो अभी 5-6 स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें सेकुलर फोर्सेस ज्यादातर जीत जाएंगे। मगर ये लोग कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जो बच्चों के लिए किताब है, स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, उसमें भी वो कोशिश कर रहे हैं मजहबी दखल अंदाजी करने के लिए। तो हमारी लड़ाई कई फ्रंट्स पे है, केवल राजनीति में भी नहीं, मगर शिक्षा में भी, कानून में भी, ये सब कुछ चल रहा है।
जी तो आपको क्या लगता है इसके इम्पैक्ट क्या हो सकता है, खासतौर पर आने वाले इंतखाबात में, और मुल्क के अंदर इस चीज़ का एहसास है, क्योंकि मेजॉरिटी अगर सेकुलर माइंडेड है और मज़हब और मजहबी बुनियादों पर तफरीक कोई कानून जो है वो उसकी हौसला शिकनी करता है, तो इसके असरात हम क्या देख सकते हैं वहाँ पर?
देखिए क्या होता है कि जब गाँव में होता है, विलेजेस में होता है,
जहाँ
बहुत सारे कचहरी नहीं है, बहुत सारे वकील नहीं है, वहाँ ये दखल होती है और वहाँ लोगों को डराने की कोशिश होती है। मगर हमारा सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश है, वहाँ सबसे ज्यादा लोग हैं, तो वहाँ लगता है कि जो जमहूरियत की पार्टी है, जो कहती है अपने आप को जमहूरियत की पार्टी, नरेंद्र मोदी की, वो हार जाएंगे। और ऐसे और कई राज्यों में, पंजाब वगैरह जो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, इसकी बॉर्डर है बीच में, वहां पर भी
मोदी सरकार हार जाएगी, मगर जो उन्होंने गड़बड़ किया है किताबों को, जो स्टूडेंट्स की किताब है, छात्रों की किताब है, उसमें गलत लिखने के लिए, इतिहास को गलत दिखाने के लिए, और जो वो कोशिश कर रहे हैं जो हमारे संस्थाएं इंस्टीट्यूशंस में उनमें इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, जैसे जो हमारे जजेस हैं, उन जजेस ने जो रिकमेंडेशन दिए हैं कि हमें ये फलाना फलाना जज चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी वो दखल दे रहे हैं। तो हमारी लड़ाई केवल जमीन पे नहीं हो रही है, मगर जो इंस्टीट्यूशन है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, वहां पर भी लड़ाई हो रही है, मगर इनकी ताकत अब कम होगी आने वाले चुनाव में, रिजल्ट आ जाएंगे मार्च अप्रैल में। मगर हमें और केयरफुली इनसे इनका संभालना होगा, हमें ऑन गार्ड होना होगा, नहीं तो ये लोग और इन्फिल्ट्रेट करेंगे और सेकुलरिज्म पे चोट मारेंगे।
जी बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर कमल मित्रा चराय साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। सामिन चंद सेकंड की ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे पीएसएल पे, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन टू, एक ब्रेक के बाद।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
प्रोग्राम जहां रंग में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर ने सादिया सद, बात हम करेंगे पीएसएल सीज़न टू यानी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न टू, और ये बड़ा क्रिकेट इवेंट है और इसको कई हवालों से पाकिस्तान के लिए बहुत आम ख्याल किया जा रहा है। दो बड़े रेफरेंसेज, एक तो ये तवक्को है कि शायद इससे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के इम्कान पैदा हों, क्योंकि इसका फाइनल जो है वो लाहौर में कराने का फैसला किया गया है। तमाम 5 टीमें जो हैं उनके अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स और बड़े बड़े नाम उसका हिस्सा हैं, और एक बड़ा इवेंट अगर लाहौर के अंदर होता है तो तवक्कोआत रखना जो है वो बेजा नहीं है। और प्रोग्राम का जो इस पूरी जो सुपर लीग है इसका जो दूसरा अहम तवक्को है वो इस बात से है कि नया टैलेंट तलाश करने में मदद मिलेगी। पिछले सीज़न में भी कुछ प्लेयर सामने आए थे और इस सीज़न में भी तवक्को की जा रही है कि कुछ नए प्लेयर्स या नया ब्लड पाकिस्तान की टीम में शामिल हो सकता है, जो यहाँ बुनियादी तौर पर डिस्कवर होगा और फिर ये पाकिस्तान के क्रिकेट को हेल्प करेगा जो इस वक्त काफ़ी मुश्किल का शिकार है। लेकिन जब यह इवेंट शुरू है और आज उसका दूसरा दिन है, बड़े दो ज़बरदस्त बड़े कांटेदार मुकाबले हुए हैं, क्रिकेट अच्छी देखने को मिली है, वहाँ पर बुरी खबरें भी आई हैं जो क्रिकेट के लिए डिस्करेजिंग हो सकती हैं, और वो ये कि दो प्लेयर्स जो हैं जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैं, दोनों इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, शर्जील खान और खालिद लतीफ़, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। शर्जील मौजूदा ओपनर हैं T20 और वनडे में, और दोनों को ICC के जो करप्शन कोड्स हैं उनके खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि आर्जी तौर पर सस्पेंड किया गया है, और मीडिया इत्तला के मुताबिक उनको वापस भी भेज दिया गया है। हम कुछ अपडेट्स भी लेंगे, एनालिसिस भी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं सादिया अब्बासी, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, UAE बेस्ड हैं, और इस इवेंट को ख़ासतौर पर वहाँ पर से लाइव कवर कर रही हैं। इस वक्त भी स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं, NewTV के लिए के साथ वो एसोसिएट हैं। सादिया बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी ज्वाइन किया। इससे पहले कि ज़रा डिप्रेसिंग खबरों की तरफ आऊं, पहले तो मैं ये बताएं कल ओपनिंग सेरेमनी कैसे थी, ओवरऑल जोश और वलवला वहां पे कैसे आए, और कैसे रिसीव किया जा रहा है पीएसएल सीजन 2 को वहां पे?
जी असद, कल तो हम ओपनिंग सेरेमनी और कल का मैच देख के हैरान रह गए। जिस तरह से लोगों का जोश और खरोश था और क्राउड का रिस्पॉन्स था वो बहुत ही लाइक दे वर वेरी एक्साइटेड, और ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मैच हमारे पाकिस्तान के होम ग्राउंड में नहीं हो रहा। और पूरे UAE से लोग आए हुए थे यहाँ पे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान और दुनिया भर से भी क्रिकेट फैंस जो हैं वो आए हुए थे यहाँ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और कल की जो सेरेमनी थी उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे, जब उन्होंने परफॉर्म किया तो लोगों ने बहुत इंजॉय किया, और उसी के बाद से PSL जो है वो IPL के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी लीग बन गई है। और ओपनिंग सेरेमनी में मैं आपको असद बताऊं कि 3500 मुख्तलिफ TV लाइट्स जो हैं वो उनका इस्तेमाल किया गया। इसी तरह जो फायरवर्क्स थे उन्होंने उनसे बहुत इंजॉय किया जो यहाँ पे लोग थे।
अच्छा ये बताइए, सबसे ज्यादा किस टीम की फैन फॉलोइंग, किस प्लेयर की फैन फॉलोइंग वहाँ पे अभी देखी जा रही है?
जी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग यहाँ पे UAE में तो जलमी की है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे जो पठान हमारे भाई हैं वो पेशावर जलमी को सपोर्ट करते हैं और स्पेशली शायद अफरीदी, हालांकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे लेकिन इसके बावजूद भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। और इसी यही वजह है कि कल का जो मैच था उसमें क्राउड बहुत ज्यादा था, और एक रीजन ये भी था कि कल वीकेंड था लेकिन आज भी छुट्टी है, लेकिन कल के मुकाबले में आज क्राउड कम है।
अच्छा साथी, ये बताइए जो ताजा तरीन अब डेवलपमेंट आई है, दो प्लेयर्स को आरजी तौर पर सस्पेंड किया गया, शर्जील खान, खालिद लतीफ, दोनों इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा है, ये कितना डिस्करेजिंग साइन हो सकता है? इनकरेजिंग भी वैसे हो सकता है, सेंस में कि अगर कोई कहीं पे भी खिलाफ वर्जी का शुबा भी हो रहा है तो वो कम अज कम स्कैन हो गया है, लेकिन डिस्करेजिंग ये है कि इस इवेंट से बहुत ज्यादा तवक्कोआत हैं और इस तरह का लेबल यकीनन वो उससे बचना चाहेंगी पूरी मैनेजमेंट, पीसीबी और बाकी जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं।
जी बिल्कुल असद, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले नजम सेठी यहाँ मीडिया सेंटर में आए थे और उनसे हमने किया, तो उनका कहना था कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्रिकेट, कोई भी गलती करेगा, कोई भी कुछ करेगा तो उसको उसका पे करना पड़ेगा। और ये जो दोनों खिलाड़ी थे, खालिद लतीफ और शर्जील खान, उनको स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम में उस पर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई और उनको उनपे चेक था, क्योंकि कल के मैच के बाद भी और पहले भी उनको कुछ मशकूक अफराद से मिलते हुए देखा गया था। और उसके बाद बाकायदा जो पाकिस्तान एंटी करप्शन है उसके कर्नल आजम हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और उन्हीं इन्वेस्टिगेशन के बाद पहले तो अधूरी तौर पे उनकी उनको मुअत्तल किया गया था, लेकिन अब उनको वापस भेज दिया गया है। और शर्जील खान जो है उन्होंने मेरा ख्याल है एक जो उन्होंने खेला हुआ है, 25 ODIs हैं और 15 उनके T20 हैं। और इसी तरह खालिद लतीफ भी बहुत सीनियर हैं, लेकिन हमने सेम क्वेश्चन जब नजम सेठी और दीगर जो पीसीबी के यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं उनसे किया, तो उनका कहना था कि कोई जितना भी अहम है लेकिन क्रिकेट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।
बहुत शुक्रिया सादिया, आपने हमें वहाँ से अपडेट किया और इस पूरे इवेंट में हम आपको गाहे गाहे ज़हमत देते रहेंगे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आपका बेहद शुक्रिया। सामीन, हमने इमरान खान से बात की है, इमरान खान जूनियर जो पाकिस्तान के इस वक्त टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा भी हैं लेकिन वो इस PSL सीजन 2 का हिस्सा नहीं है, उनसे भी हमने बात की है, वो एक निजी टेलीविजन के लिए बतौर कमेंट्रेटर इस इवेंट को देख रहे हैं, आइए ज़रा उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2 2017 पूरे एक्शन में है और इस पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान, पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, बड़े ज़बरदस्त सीमर हैं लेकिन वो इस इवेंट का हिस्सा नहीं, ये भी हम उनसे मालूम करेंगे, बाकी चीज़ें भी कि क्या ये इवेंट, क्या ये सुपर लीग पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की वापसी में और फिर ख़ासतौर पर जिस तरह के बुरहानों का शिकार है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, क्या नया टैलेंट तलाश करने में मददगार साबित हो सकती है। इमरान खान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकाला। पहले तो आप हमें यही बताइए कि आप इस इवेंट का हिस्सा क्यों नहीं हैं? मेरे तो आप बड़े ज़बरदस्त फेवरेट बॉलर हैं, बड़े नेचुरल आप सीमर हैं, लेकिन आप इस इवेंट में क्यों अट्रैक्ट नहीं कर सके हैं टीम ओनर्स को?
देखिए, मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, तो अपना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इस साल नहीं होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपने परफॉर्मेंस या अपने फिटनेस से
आप बिडिंग में थे, कम से कम जावेद आफरीदी की नजर आप पे नहीं पड़ी है क्या?
देखिए, नजर तो सबकी पड़ती है लेकिन बस नसीब की बात है, अनलकी रहे, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि पेशावर के लिए और पाकिस्तान के लिए अच्छी से अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा और जो वीकनेस है उस पर वर्क करूंगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जरूर।
नहीं नहीं नहीं, ग्रेट और गुड लक नेक्स्ट टाइम, बस आपके बड़े ज़बरदस्त मेंटोर होंगे आपके साथ, अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी तजवीज़ मैं ज़रूर देना चाहूँगा ऑन एयर इस वक्त आपको भी कि T20 में बहुत ज़्यादा फोकस जो है ना वेरिएशंस पे हैं, बड़े मीडियोकर बॉलर अच्छी वेरिएशंस के साथ वो अपने आप को बेहतर रजिस्टर करते हैं और T20 के मुताबिक अपने आप को ढालते हैं, सो ये चीज़ शायद आपको भी फॉलो करनी पड़ेगी। इमरान, आप आते हैं ज़रा इस इवेंट की जानिब, दो बड़ी उम्मीदें हैं इस के साथ, PSL के साथ, एक तो शायद पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो और दूसरा ये कि नया टैलेंट शायद तलाश करने में मदद मिले, आप क्या कहते हैं?
देखिए, पिछले साल जो ये टूर्नामेंट हुआ सारे लोग इसके इंतजार में थे कि कब स्टार्ट होगा, कब सॉल्व होगा, लेकिन ये PCB की और नजीम सिटी साहब की एफर्ट की वजह से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ और जो है ना सारा क्रेडिट PCB को जाता है, क्योंकि पिछले साल हमारे पास 3-4 यंगस्टर आए टीम है, जैसे अजहर है, नवाज है, हमाद वसीम है, आसम अली है, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जिस तरह बाहर के प्लेयर आ रहे हैं हमारे लीग में खेल रहे हैं, मैकॉलम है, क्रेस गेल है, संगकारा है, जयवर्धन है, सनी है, तो इसकी वो हमारी प्लेयर यंगस्टर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा, हमारी यंगस्टर के साथ اپنا تجربہ شیئر کرے گا تو انشاءاللہ یہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کا فائنل پاکستان میں ہے تو یہ سب دنیا کو ایک میسج ہے کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے اور انشاءاللہ ادھر واپس کرکٹ آئے گا,
اس سے واپس آئے گا. آپ یعنی دونوں باتوں پہ آپ کا بھی بھروسہ ہے کہ نیا ٹیلنٹ بھی مل سکتا ہے اور پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کا بھی ایک راستہ کھل سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں عمران خان, ہر آدمی نے تقریباً جو کرکٹ لور ہے پاکستان کے اندر جو اس ایونٹ کو دیکھ رہا ہے اس نے کسی نہ کسی ٹیم پہ ہاتھ رکھا ہے, یعنی اس کی سپورٹ کی ہے. ویسے تو ساری ٹیموں کے اندر بڑے فیوریٹ پلیئرز ہیں, مجھے بذات خود اپنی ٹیم چوائس کرنے میں اس وقت بڑی مشکل پیش آئی. آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں پرسنلی؟
میں تو سپورٹ کو سارا پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کر رہا ہوں, لیکن جو فیوریٹ ٹیم ہے میرا وہ اسلام آباد ہے.
اچھا فیوریٹ اسلام, کیوں؟
جی اسلام آباد یونائیٹڈ.
نہیں اسلام آباد یونائیٹڈ کیوں فیوریٹ ہے, وجہ بتائیں.
دیکھیے پچھلے سال وہ چیمپئن ہے, دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ایک ایکسپیرینس میچ وینر ہے, جس طرح مصباح الحق نے پاکستان کی کرکٹ کو کہاں سے کہاں سے پہنچا دیا, اب ٹیسٹ نمبر ون پہ آ گئے. اب ان پچھلے سال جس طرح اس نے کپتانی کی ہے پوری پی ایس ایل میں, اور پہلے میچ میں جو رات کو ہوا تھا 190 کس طرح چیز ہوا, ان کی ایک کمبینیشن ہے اور ان کا ایک اسٹرینتھ جو نظر آ رہا ہے وہ ٹیم کمبینیشن ہے. تو مجھے اس وجہ سے جو ہے نا جس ٹیم کمبینیشن اچھی ہو جو ایک دوسرے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہوں وہ یونائٹیڈ میں ہے.
صحیح آپ کی بات درست ہے. اب یہ بتائیں کہ جو کراچی کنگز ہے پچھلی بار بھی بڑی اس کی ہائپ تھی اور ابھی بھی وہاں پہ بھی بڑا لیتھل کمبینیشن ہے, کرس گیل وہاں پہ ہیں, شعیب ملک ان کے لیے کھیل رہے ہیں, سنگاکارا کیپٹن ہیں, بڑے سیزن پلیئر ہیں, تو کراچی کنگز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
دیکھیے آن پیپر اگر دیکھیں تو کراچی کنگز سب سے فیورٹ ہے, سب جس کی بھی بات کرتے ہیں کہ کراچی کنگز فیورٹ ہے. لیکن اللہ کرے کہ اس سال کرس گیل چل جائے, اگر کرس گیل چل جائے گا تو وہ تو میچ ون سائڈ لے کے جاتا ہے,
سب کو اڑا دے گا.
پھر شک نہیں ہے, پھر تو اللہ کرے کہ وہ چل جائے, میکولم چل جائے, کیونکہ یہ پی ایس ایل ہے جو جس کراؤڈ آتا ہے جو لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ مزے کے لیے دیکھتے ہیں.
صحیح.
اور جس طرح رات کو ان لوگوں نے وکٹ بنایا, ایسے وکٹ بنائے تو پورا پی ایس ایل ایک مزہ آئے گا. جس طرح 190 ہوا اور دوبارہ وہ چیز ہوا, ایسے میں جو لوگوں کو کرکٹ ملنے کا شوق اور بھی زیادہ ہو جائے گا, مزہ آئے گا. کیونکہ اگر لو اسکورنگ میچ ہوتا ہے وہاں 100-120 اور پھر وہ دوبارہ چیز نہیں ہوتا ہے یا ہو, لیکن وہ لو اسکورنگ میچ اتنا کراؤڈ اور لوگوں کو مزہ نہیں دیتا جس طرح 190-200 دوبارہ چیز ہوتا ہے, چکی چوکے لگتے ہیں. تو اللہ کرے کہ باہر کی بھی پلیئر چل جائے اس ٹورنامنٹ, ہمارے بھی جتنے
پلیئر
وہ فارم میں آ جائے.
عمران خان یہ بتائیں ذرا ٹیموں پہ کوئک نظر ڈالتے ہیں, لاہور قلندر, میں پرسنلی اس دفعہ لاہور قلندر کو اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں کہ بڑے جو میرے فیوریٹس نام ہیں پاکستان کرکٹ میں جیسے عمر اکمل ہے, وہاں پہ نیتن میکیلم ہیں اور اس کے علاوہ رائے ہیں, ویوین رچرڈ اس کو ان کو مینٹور کر رہی ہیں, بھٹی ہیں بڑے اچھے آل راؤنڈر ہیں. سو لاہور قلندر سے توقعات پچھلے سیزن میں بھی بہت زیادہ تھیں لیکن بری طرح ناکام رہی, اس سیزن میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ مختلف ٹیم کے طور پہ سامنے آ سکتی ہے؟
دیکھیے بیٹنگ تو ان کی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے لاہور قلندر کی, لیکن اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ میکولم جو ہے نا لاہور قلندر میں ہے. میکولم بھی نیوزی لینڈ کی کرکٹ کس طرح فاسٹ کیا, اس کی ان کی کرکٹ دو تین سال میں جس طرح میکولم نیوزی لینڈ
کی
اس نے حاصل کیا, تو اس نے نیوزی لینڈ کی کرکٹ بہت چینج کیا پہلے سے. تو میرے خیال میں یہ لاہور قلندر کی یگسٹر کے لیے اور پلیئر کے لیے بہت اچھی سائن ہے, کیونکہ اگر لاہور قلندر جیت نہ بھی جائے لیکن ہمارے پلیئر میکولم سے کچھ ایسے چیزیں سیکھے جو پاکستان کرکٹ بہتری ہی رہا ہوں, تو یہ بھی ہمارے لیے بہت اچھا سائن ہے.
اچھا اب بات ہے ذرا پشاور زلمی کی جانب, پیپرز میں تو وہاں پہ بھی بڑے بڑے نام ہیں لیکن پرفارمنس, کل بڑا سکور کرنے کے باوجود وہ اس کا دفاع نہیں کر سکے, بالنگ بہت کمزور نظر نہیں آ رہی آپ کو؟
دیکھیے ابھی ان لوگوں نے جس طرح رات کو میچ کیا تھا, ڈیو فیکٹر بہت زیادہ ہے دبئی میں, تو اگر رات کو میچ ہوتا ہے تو ان میں جس کی سیکنڈ بالنگ ہوتی ہے اس کی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. بالنگ ان کی اچھی ہے, جنید خان ہے, افسانہ علی ہے, دونوں کرن پاکستان کے پلیئر ہیں, ساتھ میں شاہد بھائی ہے, ڈیرل سنی ہے, لیکن رات کو جو میچ ہوا اس میں آپ نے دیکھا بہت زیادہ ڈیو فیکٹر تھا, اس کی وجہ سے بال گرپ نہیں ہو رہا تھا.
صحیح, شاہد افریدی کے لیے کتنا بڑا موقع ہے کہ وہ ایک بار, بڑی فین فالوئنگ ان کی, کتنا ان کے پاس موقع ہے کہ وہ کم بیک کریں اپنے آپ. لیکن ایک بات کا مجھے بڑا پرابلم ہے, اتنے ایکسپیرینس پلیئر ہیں, وہ اپنے آپ کو ساتویں چھٹے نمبر لے پہ لے کے بیٹھے ہیں, ٹی ٹوینٹی میں وہ اوپر آ کے کیوں نہیں کھیلتے؟ اگر انہوں نے ڈلیور کرنا ہے, ان کے بلے نے چلنا ہے, ٹیم کو مدد کرنی ہے, تو وہ تو اوپر کر سکتے ہیں.
देखिए जो डेविड सैमी है, शाहिद भाई है, वो ऐसे प्लेयर जो तीन चार ओवर की में वो मैच का जो है ना पांचा पास कर सकता है, इसकी वजह से वो नीचे खेलता है। अगर वो आप देख ही है शाहिद भाई को पाकिस्तान की तरफ से भी जो T20 में खेलता तो नीचे खेलते थे, क्योंकि वो तीन चार ओवर में वो अपना जो काम है वो निकालता है। लेकिन रात को दोनों नहीं चल सके, और दूसरा ये कि रात को उन लोगों ने रन तो बहुत ज्यादा किए थे, 190 T20 में बहुत अच्छी स्कोर है, लेकिन बैड लक उनकी ये रही कि डीप प्रेशर की वजह से उन लोगों की जो है ना ज्यादा बॉल ग्रिप नहीं हो रहा था, जगह पे नहीं गिर रहा था, तो उसकी वजह से वो रन चेज हुआ। लेकिन बाकी उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है।
ठीक है, अब एक और टीम जो आखिरी टीम है उसका जरा तस्करा करते हैं, वो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। सरफराज नए कैप्टन भी बने वनडे के, आपके ख्याल में पिछली बार भी ये इनको कहा जा रहा था कि ये एक तरह से अंडर हॉर्स साबित हुए हैं, छुपे रुस्तम हैं, और बाद में उन्होंने बड़ा मार्का किया, आगे तक पहुँच गए। सो इस बार ग्लैडिएटर से क्या तवक्कुआत हैं आपकी?
देखिए ग्लैडिएटर ऑन पेपर आपको अच्छा नहीं नजर नहीं है, लेकिन उनकी कम्बिनेशन, उनकी जो पिछले साल उन लोगों ने परफॉर्मेंस किया, सब टीम को मैसेज दिया है कि हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल में उनमें ऑलराउंडर भी ज्यादा है, बिल्कुल एक्सपेक्ट टीम है। और जिस तरह आपने कप्तान की बात की है सरफराज, तो वो एग्रेसिव कप्तान है, और मेरे ख्याल में वो लोग जो है ना टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे।
ओवरऑल वैसे सरफराज को जो कैप्टन बनाया है वनडे का, और मुमकिन तौर पे शायद टेस्ट में भी वही कैप्टेंसी उन्हीं को मिलेगी, कैसा फैसला है?
बहुत अच्छा फैसला है पीसीबी का, क्योंकि यंगस्टर है और तीन चार साल से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा फैसला है और अच्छा ऑप्शन था हमारे पास जो सरफराज को कप्तान बनाया।
आखिरी बात PSL पे वापस आते हैं, जरा बताइएगा कि क्या जोश और जज्बा जो आपको वहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर अक्सरियत ऑफ कोर्स वहाँ पे पाकिस्तानियों की है जो ऑडियंस में हैं, और दुबई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में ये मैचेस हो रहे हैं। अगर ये मैचेस पाकिस्तान में आए तो क्रिकेट जो पिछले कई बरसों से नहीं हो रही, शायकीन के लिए कितना बड़ा तोहफा हो सकता है?
देखिए हमारी क्रिकेट 5-6 सालों से पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, दूसरा है कि हमारा रैंकिंग भी बहुत पीछे है, लेकिन हमारे कौम जो है ना क्रिकेट की बहुत दीवानी है, 100% लोग क्रिकेट देख रहे हैं, और जो PSL स्टार्ट हुआ है उन लोगों ने बहुत इंतजार किया है। रात को मैच मैं नेट पे देख रहा था, हर कोई कहता है कब स्टार्ट होगा, कमेंट्स दे रहे हैं, तो पाकिस्तानी लोग बहुत दीवानी है क्रिकेट के। और जिस तरह सिटी साहब ने ऐलान किया कि इसका फाइनल पाकिस्तान में होगा, तो अगर फाइनल पाकिस्तान में होगा तो इंशाल्लाह अब पाकिस्तान एक जो पहले हालात थे वो से बेहतर है, और इंशाल्लाह सारी दुनिया को एक मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान अब सेफ है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट वापस स्टार्ट होगा।
बहुत प्रीमैच्योर है,
हमारा अपने हीरोज को अपने मुल्क और सरजमीन की देखेंगे।
बहुत प्रीमैच्योर होगा ये सवाल, अभी तो आज दूसरा दिन है, दूसरा मैच है खेला जा रहा। आपके ख्याल में आप फाइनल में किन टीमों को देखने का इम्कान ज्यादा देखते हैं, और फिर आपके ख्याल में फाते कौन हो सकता है?
देखिए अभी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि T20 फॉर्मेट है, T20 में दो ओवर में सब कुछ चेंज हो सकता है, शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें आप ये नहीं कहते कि ये टीम स्ट्रांग है ये वीक है, इसमें ऑन द डे होता है। अब पहले से मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा या कौन टीम है, लेकिन जो अच्छा खेलेगा और जो अच्छा परफॉर्म अच्छा कम्बिनेशन होगा पूरी टूर्नामेंट में, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसी दो टीमें आए कि हम अच्छी क्रिकेट मिले और हम इंजॉय करें।
बहुत शुक्रिया इमरान खान, और गुड लक, होपफुली आप अगले सीजन में इन एक्शन होंगे। अभी आप टेलीविजन के ऊपर इन एक्शन है, और आप तबसरा दे रहे हैं, और वॉइस ऑफ अमेरिका से भी आपने बात की, आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच।
और सभी ने इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है, और इमरान खान जूनियर हमारे इस आखिरी सेगमेंट में, उनका तफसीली इंटरव्यू आप सुन रहे थे, और वो काफ़ी पुरुमीद हैं कि जो ये इवेंट है वो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की बहाली और साथ साथ नए टैलेंट, नया जो कहना चाहिए कि इंडक्शन, नया ब्लड वो पाकिस्तान की टीम के अंदर लाने में मददगार हो सकता है। इसके साथ ही प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। प्रोड्यूसर तीन सादी असद और इंजीनियर सलमान तारवाली, असद हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।